بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ نساء کی 58 اور 59 آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری شہات محمد انور نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، نسندیہ ایشور تمہیں آدیش دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا دو، اور جب کبھی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو نیائے سے فیصلہ کرو۔ نسندیہ ایشور تمہیں اچھے اپدیش دیتا ہے، نشچت روپ سے وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور کا آگیا پالن کرو تتھا پیغمبر اور سوئم تم میں سے ایشور دوارا نردھارت لوگوں کا آگیا پالن کرو۔ یدی کسی بات میں تم میں وواد ہو جائے تو اسے ایشور کی کتاب اور پیغمبر کی اور پلٹاؤ، یدی تم ایشور اور پلے پر ایمان رکھتے ہو۔ نسندیہ وادوں کو سماپت کرنے کے لیے یہ پدھتی بہتر ہے اور اس کا انت ادھک بھلا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے دوستوں، کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج سوموار ہے، مئی کی 23، شوال کی 21 اور خرداد کی دوسری تاریخ۔ کارکرموں کی روپ ریکھا اس پرکار ہے، ہم پہلے سماچار پیش کریں گے، سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا ہوگی، راجنیتک چرچا کے اپرانت وشو درپن آپ سنیں گے، اور سبھا کا انتم کارکرم ہوگا صحت کا راز۔ شروتاؤں، یہ تھی روپ ریکھا، اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران اور اومن کے بیچ کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوئے ہیں۔ راشٹرپتی نے کہا کہ شہید خدائی کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سعودی عرب نے کئی دیشوں کے یاتریوں پر پھر سے پرتیبند لگا دیا ہے۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ چین کے ورودھ جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ایران اور اومان کے بیچ کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوئے ہیں۔ ویاپارک سہکاریتا کو وستت کرتے ہوئے اومان اور ایران نے کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے ہیں۔ ایران کے ویاپار ایوم ادیوگ منتری اور اومان کے ویاپارک منتری نے سوموار کو اومان میں کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے۔ ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی سوموار کی صبح ایک اچ استریہ ششٹمنڈل کے ساتھ اومان پہنچے تھے۔ راشٹرپتی کے ششٹمنڈل میں منتری منڈل کے سدسیوں سہیت کئی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی شامل ہیں۔ پچھلے سال ایران اور اومان کے بیچ 1.3 ارب ڈالر کا ویاپار ہوا تھا۔ دونوں ہی دیش آرتھک کھیتر میں ہر پرکار کی سمبھاوناؤں سے لابھ اٹھانے کے پریاس کر رہے ہیں۔ اومان کے سنچار مادھیموں کے انوسار ورتمان سمے میں اومان میں ایران کی لگ بھگ 3000 کمپنیاں سکریہ ہیں۔
اومان کی یاترا پر روانہ ہونے سے پہلے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ اپرادھیوں سے شہید خدائی کا بدلہ نشچت روپ سے لیا جائے گا۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی اومان نریش کے آدھیکارک نمنترن پر ایک اچ استریہ پرتندھی منڈل کے ساتھ مسقط کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ راشٹرپتی نے اومان روانہ ہونے سے پہلے سپاہی پاسداران کے شہید کرنل سید خدائی کے پریجنوں کے پرتی سہانبھوتی جتائی اور سانتونا دی، اور کہا کہ اس گھٹنا کی جانچ پڑتال سے سدھ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے وشو سامراجوادیوں کا ہاتھ ہے۔ راشٹرپتی نے کہا کہ جو لوگ پوتر حرم کی رکشا کرنے والوں سے پراجت ہو چکے ہیں، وہ اس طرح سے اپنی مجبوری درشانا چاہتے ہیں۔ इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मैं बल देकर कहता हूं कि सुरक्षा बल इस मामले की जांच करेंगे और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शहीद का बदला अपराधियों से अवश्य लिया जाएगा। उन्होंने अपनी ओमान यात्रा के उद्देश्यों के बारे में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और ओमान के बीच मित्रतापूर्ण संबंध हैं और उनकी यात्रा दोनों देशों के संबंधों में विस्तार के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत करने के संबंध में वार्ता करेंगे।
ज़ायोनी शासन ने घोषणा की है कि उसने समस्त दूतावासों को अलर्ट कर दिया है। तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इसराइली दूतावासों को अलर्ट कर दिया गया है। हिब्रू भाषा के संचार माध्यमों ने सांकेतिक रूप से पिछले वर्षों में ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए अपराधों की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि अतीत की कार्रवाइयों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित लोग निशाना बने हैं। उसके विपरीत इस बार सिपाही पासदारान का एक वरिष्ठ अफसर निशाना बना है। इस ज़ायोनी संचार माध्यम की स्वीकारोक्ति के अनुसार इसराइल की चिंता का एक कारण यह है कि तेहरान ने घोषणा की है कि यह हत्या रेड लाइन को पार करने जैसी है और इसके विशेष परिणाम होंगे और अपराधियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रहे कि कल रविवार को पूर्वी तेहरान के मुजाहिदीन इस्लाम नामक इलाके में जनरल सैयद खुदाई को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। शहीद सैयद खुदाई लगातार पवित्र स्थलों की रक्षा के महान कार्य में अपनी सेवाएं देते रहे हैं।
सऊदी अरब में दोबारा कोरोना के फैल जाने के बाद इस देश ने अपने ही देश के नागरिकों पर कई देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन 16 देशों में सऊदी अरब के नागरिकों की यात्रा करने पर प्रतिबंध है उनमें भारत के अलावा लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल हैं। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि इन 16 देशों के अलावा सऊदी नागरिक जो गैर अरब देशों की यात्रा करना चाहते हैं उनके पास 6 महीने से अधिक के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि अरब देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। यात्रा के लिए मूल पहचान पत्र और परिवार की रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके अलावा सऊदी अरब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को आश्वासन दिया है कि देश में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला पता नहीं चला है। निवारक स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि किंगडम में किसी भी संदिग्ध बंदर के मामलों की निगरानी और खोज करने की क्षमता है और यदि कोई नया मामला सामने आता है तो संक्रमण से लड़ने के लिए भी तैयार है।
इराक में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई बार धूल भरी आंधियां आई हैं जिनके कारण बहुत से लोगों को अस्पतालों में एडमिट किया गया है। इसी बीच इराक के स्वयंसेवी बल हशदुशाबी ने लोगों को सचेत किया है कि धूल भरी आंधियों की आड़ में दाइश के आतंकवादी किसी भी प्रकार की हिंसक एवं अमानवीय कार्रवाई कर सकते हैं। हशदुशाबी के बयान में कहा गया है कि आतंकवादी गुट दाइश वर्तमान समय में खराब मौसम का दुरुपयोग करते हुए आतंकवादी कार्रवाइयां कर सकता है। इराक के स्वयंसेवी बल ने इस देश की जनता से ये मांग की है कि बिगड़ते मौसम के दौरान वे लोग बहुत ज्यादा सचेत रहें। इसी बीच इराक के फतह गठबंधन के एक अधिकारी ने बताया है कि हशदुशाबी के जियालों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अभी हाल ही में दाइश के आतंकवादियों को करकूक बगदाद राजमार्ग तक पहुंचने से रोक दिया। अब्दुल हादी ने बताया कि हशदुशाबी ने प्रभावी कार्रवाइयां करके दाइश की कई कार्रवाइयों को विफल किया है। उन्होंने कहा कि दाइश का मुकाबला करने के लिए देश में हशदुशाबी का होना बहुत जरूरी है।
अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान के विरुद्ध बल प्रयोग करने का चीन का फैसला अनुचित होने के साथ ही पूरे क्षेत्र के लिए भयानक होगा। जो बाइडन का कहना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बाइडन ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। फार्स न्यूज के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फोमियो कोशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर ताइवान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में चीन ताइवान में आग से खेल रहा है। राष्ट्रपति पद हासिल करने के बाद से बाइडेन चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ही नीतियों का अनुसरण करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अमरीकी राष्ट्रपति ने अरबों डॉलर के सैन्य बजट पर हस्ताक्षर किए थे। अमरीका के इस नए रक्षा बजट में चीन से मुकाबला करने और ताइवान का समर्थन करने के लिए अलग से राशि को विशेष किया गया है। उल्लेखनीय है कि चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। अमरीका की ओर से ताइवान के लिए हथियारों की सप्लाई को चीन अपनी संप्रभुता के विरुद्ध मानता है। हालांकि अमरीका इन सभी बातों के बावजूद ताइवान के बारे में तनाव फैलाने वाली नीतियां अपनाए हुए हैं। ये वो मुद्दा है जिसके बारे में चीन कई बार चेतावनी दे चुका है।
व्लादिमीर पुतिन ने यह बात स्वीकार की है कि दुनिया को खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति भवन की ओर से ऐलान किया गया है कि निसंदेह मॉस्को विश्व में अनाज के बड़े निर्यातकों में से एक है। इस बयान के अनुसार इसके बावजूद हमारा मानना है कि विश्व को अनाज की कमी का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से दुनिया में गल्ले के संकट की चेतावनी के संदर्भ में रूसी राष्ट्रपति भवन ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी राष्ट्र संघ के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि विश्व को भविष्य में अनाज के गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो महीनों के दौरान गेहूं की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका एक कारण यह है कि रूस, भारत और कजाकिस्तान सहित विश्व के गेहूं के बड़े निर्यातक देशों ने अपने आंतरिक बाजारों में स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों से प्रदर्शनों को जारी रखने की बात कही है। इमरान खान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि संसदीय चुनाव के आयोजन तक वे राजधानी में बने रहें। अनातोली समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने रविवार को इस्लामाबाद में अपने समर्थकों से मुलाकात की। उन्होंने संसदीय चुनाव में भाग लेने की बात कही। इमरान खान ने समाज के सभी वर्गों से अनुरोध किया है कि वे 25 मई तक राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन जारी रखें। उनका कहना था कि हमारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेंगे। इमरान खान अगस्त 2018 में सत्ता में पहुंचे थे, बाद में अप्रैल 2022 में उनकी सत्ता चली गई। उनका कहना है कि अमरीकी षड्यंत्र के कारण मुझको सत्ता से अलग होना पड़ा। इमरान खान की पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वे उनके समर्थकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में बाधा न बने। और इसी के साथ रेडियो थेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। तेहरान में IRGC के कमांडर को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
इस्लामी क्रांति संरक्षक बल सिपाही पासदारन के एक सैनिक सैयद खुदाई को आतंकवादियों ने रविवार को 5 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। ओमान की यात्रा पर रवाना होने से पहले राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि अपराधियों से शहीद खुदाई का बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ओमान नरेश के आधिकारिक निमंत्रण पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मस्कत के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति ने ओमान रवाना होने से पहले सिपाही पासदारन के शहीद कर्नल सैयद खुदाई के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई और सांत्वना दी और कहा, इस घटना की जांच पड़ताल से सिद्ध हो जाएगा कि इसके पीछे विश्व साम्राज्यवादियों का हाथ है। राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग पवित्र हरम की रक्षा करने वालों से पराजित हो चुके हैं, वे इस तरह से अपनी मजबूरी दर्शाना चाहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मैं बल देकर कहता हूं कि सुरक्षा बल इस मामले की जांच करेंगे और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस शहीद का बदला अपराधियों से अवश्य लिया जाएगा। इस्लामी क्रांति की सफलता के आरंभ से ईरान को आतंकवादी कार्रवाइयों और हमलों का सामना रहा है। दूसरे शब्दों में इस्लामी गणतंत्र ईरान आतंकवाद की भेंट चढ़ने वाला दुनिया का एक असली देश है और अब तक 17,000 से अधिक ईरानी अधिकारियों, राजनेताओं, धर्मगुरुओं और सामान्य लोगों को, यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिकों को आतंकवादी शहीद कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आतंकवादी क्यों और किन लक्ष्यों को साधने के लिए ईरान में आतंकवादी हमले और कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। उसका एक जवाब यह है कि जिन कारणों से ईरान के दुश्मन इस्लामी क्रांति के विरोधी थे और नहीं चाहते थे कि इस्लामी क्रांति सफल हो, उन्हीं कारणों से आज भी ईरान में आतंकवादी हमले होते रहते हैं। ईरान में जो आतंकवादी हमले होते हैं उसके पीछे विश्व साम्राज्यवादियों के हाथ होते हैं। दूसरे शब्दों में आतंकवादी विश्व साम्राज्यवादियों के हाथ कंडे होते हैं और ये आतंकवादी उन्हीं पर हमला करते हैं जिन पर हमला करने के लिए विश्व साम्राज्यवादी उन्हें निर्देश देते हैं। उसकी वजह यह है कि विश्व साम्राज्यवादी कभी भी नहीं चाहते कि ईरान प्रगति करे, क्योंकि ईरान दुनिया के लिए आदर्श बनता जा रहा है और ईरान को प्रगति और विश्व के लिए आदर्श में परिवर्तित होने से रोकने के लिए विश्व साम्राज्यवादी शक्तियां अपने एजेंटों से आतंकवादी हमले करवाती हैं। परंतु गत 43 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईरान को प्रगति करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर कोई ताकत प्रगति करने से रोक सकती होती तो अब तक रोक चुकी होती। प्रतिबंधों के काल में विभिन्न क्षेत्रों में ईरान की ध्यान योग्य प्रगति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
फिलिस्तीनी गुटों ने आतंकवाद के प्रति अमेरिका की दोहरी पॉलिसी की कड़ी आलोचना की है। जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
फिलिस्तीनी गुटों ने इसराइली कट्टरपंथी आंदोलन काख को आतंकवादी गुटों की सूची से निकालने पर आधारित अमरीकी वित्त मंत्रालय के फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की है। अमरीकी सरकार ने इसराइली शासन का समर्थन जारी रखते हुए आतंकवादियों की सूची से इसराइली कट्टरपंथी आंदोलन काख को निकालने का फैसला किया है। अमरीका का यह फैसला वाशिंगटन द्वारा बैतुल मुकद्दस पर अवैध कब्जा जमाए इसराइली शासन के समर्थन की एक और निशानी है। इसराइल का कट्टरपंथी आंदोलन काख 1994 में अल खलील शहर में स्थित मस्जिद इब्राहिमी के जनसंहार का मुख्य जिम्मेदार है। काख आंदोलन 90 के दशक के अंतिम वर्षों में अमेरिका में मौजूद मेयर खाना के हाथों गठित हुआ, लेकिन उसे खाना पलायन और अपने कुछ समर्थकों के क्षेत्र से निकल जाने के बाद अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। इस कट्टरपंथी इसराइली आंदोलन ने वर्ष 1971 में अपनी गतिविधियां शुरू की। काख ہیبرو بھاشا کا شبد ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے اس طرح سے۔ اسرائیلی کٹرپنتھی آندولن کا رویہ سشستر ہنسک رویہ بھی رہا ہے۔ امریکی سرکار کی یہ کاروائی ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد میں پرستاؤ 23-32 پاس کر کے بستیوں کے نرماڑ کی نندا کی گئی اور اس کو ترنت روکنے پر بل دیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کاخ کٹرپنتھی آندولن بستیوں کے نرماڑ کو ضروری اور اٹل سچائی قرار دیتا ہے۔ ایک انیہ بندو یہ ہے کہ زیونی کٹرپنتھی کاخ آندولن فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالنے، اپنا گھر بار چھوڑنے پر انہیں مجبور کرنے اور دوسرے دیشوں میں انہیں شرن لینے پر بل دیتا ہے۔ اس کٹرپنتھی آندولن کا خیال ہے کہ فلسطین پر کیول زیونیوں کا ہی ادھیکار ہے۔ زیونی شاسن نے بھی حالیہ کچھ مہینوں کے دوران فلسطینیوں پر کئی بار حملے کیے اور انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا اور ان کے گھر اور ان کی سمپتی کو بھی ضبط کر لیا۔ اس کے علاوہ اس زیونی آندولن نے حال ہی میں زیونی آتنکی گٹوں کی فلیگ ڈانس ریلی کے دوران بیت المقدس کے قبۃ الصخرہ کو توڑنے کی بھی اپیل کی۔ اس آندولن کی آتنکی اور نسل بھیدی پروتی کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی سرکار کا سمرتھن اسرائیل کے پرتی حد سے بڑھ گیا ہے اور یہ پوری دنیا وشیش کر شیتر کی شانتی اور سرکشا کے لیے گمبھیر خطرہ ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ اتر پردیش کی ودھان سبھا کے 18ویں صدر کے پہلے دن ستا پکش اور وپکش آمنے سامنے نظر آئے۔ بیورا دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
اتر پردیش کی 18ویں ودھان سبھا کا پہلا ستر آج وپکش کے زوردار ہنگامے کے ساتھ شروع ہوا۔ راشٹر گان کی دھن سماپت ہونے کے بعد اتر پردیش کی راجیہ پال آنندی بین پٹیل نے جیسے ہی اپنا ابھیبھاشن شروع کیا، مکھیہ وپکشی دل سماجوادی پارٹی کے ودھائکوں نے ویل کے نکٹ آ کر ویرودھ پردرشن شروع کر دیا۔ سماجوادی پارٹی کے ودھائک تختیاں لے کر ودھان سبھا پہنچے تھے اور انہوں نے سرکار کی نیتیوں کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ وپکش کے ہنگامے کے بیچ راجیہ پال نے اپنا ابھیبھاشن جاری رکھا اور سرکار کی اپلبدھیاں گنوائیں۔ سدن کے بھیتر بھی بھاجپا ودھائکوں نے بھگوا رنگ کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، جبکہ ہمیشہ کی طرح سپا ودھائکوں نے لال رنگ کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ وپکش نے بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر سرکار کو گھیرا۔ سپا ودھائکوں کے بھاری ہنگامے کے کارن سدن کی کاروائی کل تک کے لیے استھگت کر دی گئی۔ ستر آرمبھ ہونے سے پہلے سپا ودھائک اعظم خاں اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم نے ودھان سبھا ادھیکش کے کاریالے میں ودھائک پد کی شپتھ لی۔ ودھان سبھا ستر آرمبھ ہونے سے پورو مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک سمواددتا سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن کی بھاجپا سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے پرتی کٹیبدھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ہر مدعے پر چرچا کرنے اور ہر سدسیہ دوارا اٹھائے گئے پرشن کا اتر دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار جو دوسری بار ستا میں آئی ہے 26 مئی کو اپنا بجٹ پیش کرے گی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے دوسری بار بھی ستا سنبھال لی ہے لیکن اس بار اسے پہلے سے مضبوط وپکش کا سامنا ہے، اتہ ستر کے ہنگامے دار رہنے کی سمبھاونا ہے۔ ادھر بہار کی راجنیتی میں بھی ہلچل ہے۔ ایک اور لالو پرساد یادو کی پارٹی راشٹریہ جنتا دل نے جہاں بھاجپا اور کیندر سرکار کے ورودھ پوسٹر وار چھیڑ دیا ہے، وہیں دوسری اور اب بھاجپا کے ساتھ راجیہ میں گٹھ بندھن سرکار چلا رہے نتیش کمار نے اپنی پارٹی جے ڈی یو کے ودھائکوں کو اگلے 72 گھنٹے تک پٹنہ میں رہنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 72 گھنٹے بہار کی راجنیتی کے لیے بہت مہتوپورن ہیں۔ پچھلے افطار پارٹی میں راجد اور جے ڈی یو کے بیچ بڑھتی نکٹتا سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں بہار کی راجنیتی میں کوئی بدلاؤ تو نہیں ہونے جا رہا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔ ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विश्व दर्पण, उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम सेहत का राज।
विश्व दर्पण, ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। आपका स्वागत है कार्यक्रम विश्व दर्पण में, मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेटो के विस्तार और रूस की प्रतिक्रिया की। नेटो के विस्तार के ही मुद्दे पर यूक्रेन की जंग की आग भड़क उठी और अब तक भयानक तबाही हो चुकी है। इस जंग के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और हो रहा है, जबकि जंग रुकने के अब तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन जंग का असर इस इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। अगर जंग इसी तरह जारी रहती है तो निश्चित रूप से इससे और भी बड़े नुकसान सामने आएंगे। जंग रुकवाने के लिए कभी लगा कि कुछ कोशिशें हो रही हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मॉस्को का दौरा भी किया, लेकिन फिर जो बयान आए उनसे साफ हो गया कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इस बीच एक नया मुद्दा ये उठा कि स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का आवेदन कर दिया। दरअसल इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इन दोनों देशों को तैयार किया और अब तक निष्पक्ष रहने वाले इन दोनों देशों ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। आवेदन से पहले ही पश्चिमी देशों के नेताओं के बयान आने लगे थे। कनाडा में नेटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह मुद्दा गंभीर चर्चा का केंद्र बना। बैठक के बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का कहना था कि नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता के मुद्दे पर प्रगति हो रही है। उनका यह भी कहना था कि गलत जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं।
It is important that we go ahead with a quick accession because there is a lot of disinformation campaigns that are going on in Finland and Sweden.
इस मौके पर जर्मन विदेश मंत्री ने एक बयान दिया जिससे तस्वीर और भी साफ हो गई।
Deutlich für uns vereinbart Schweden und Finnland, if you are ready, we are ready.
उन्होंने जो बयान दिया उससे ये पता चला कि योजना के तहत फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किया जा रहा है। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बायरबाक का कहना था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो हम भी उन्हें शामिल करने के लिए तैयार हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन बयान दे चुकी थीं कि देश नेटो में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days.
फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली निनिस्टो का कहना था कि रूस ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस विषय में अपने देश के फैसले का बचाव किया। उनका ये कहना था कि स्वीडन और फिनलैंड अब तक नेटो में शामिल नहीं हुए थे और उनका अब भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन यूक्रेन के मसले में जो कुछ हुआ और जिस तरह रूस ने इस देश पर हमला कर दिया, उसके बाद फिनलैंड की सरकार सोचने पर मजबूर हो गई। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपनी टेलीफोनी वार्ता का भी हवाला दिया।
In the end of last year, they stated that Finland and Sweden can't join NATO. They demanded that NATO doesn't take new members. Actually, they changed their own picture by that, because we have, with Sweden, been non-aligned militarily from our own will. But by stating that, Russia actually expressed that you don't have your own will here, and that is a huge change. That made us think. And what happened in 24th February, which continues the huge warfare Russia is having in Ukraine, surely that changed also the picture. They are ready to attack a neighboring country. If that would be the case that we join, well, my response would be that you caused this. Look at the mirror.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अधिकतर नेटो सदस्य तो चाहते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल कर लिया जाए, मगर नेटो के भीतर इसका विरोध भी हो रहा है। तुर्की ने दोनों देशों की नेटो में सदस्यता का विरोध शुरू कर दिया है। तुर्क विदेश मंत्री मौलूद चावुशओग्लू का कहना है कि दोनों देश आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। तुर्क विदेश मंत्री का इशारा उन कुर्द अलगाववादियों की ओर था जो तुर्की से अलग होने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें फिनलैंड और स्वीडन का समर्थन हासिल है।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
अलबत्ता कुछ टीकाकार ये मानते हैं कि तुर्की शायद स्वीडन और फिनलैंड से अपनी कुछ मांगे मनवाकर विरोध बंद कर दे या अमेरिका बीच में पड़कर तुर्की को चुप रहने और समर्थन करने के लिए तैयार कर ले। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किए जाने का एक मुद्दा बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पश्चिमी टीकाकारों को लगता है कि इससे नेटो की ताकत में विस्तार होगा। स्काई न्यूज के एक कार्यक्रम में डिफेंस और सिक्योरिटी मामलों के विशेषज्ञ मिकाइल क्लार्क का कहना था कि स्वीडन और फिनलैंड अपनी निष्पक्षता वाली स्थिति को छोड़कर नेटो में शामिल होना चाहते हैं और उनके शामिल होने से नेटो की ताकत बढ़ जाएगी।
NATO is 30 nations at the moment, and most of the nations that have joined recently that were desperate to join NATO have been the small ones. So the last two members were Montenegro and North Macedonia. They had nothing in military terms. But Sweden and Finland add an enormous amount because of their maturity as states, because of what they represent. Sweden has been neutral since 1812 and has decided to change that status. Finland's been neutral since 1945. And the Finns, when they mobilise, they mean it. And their army is 200,000. That would make it one of the biggest armies in NATO. That's almost three times bigger than the British army.
मगर मसला नेटो की ताकत में विस्तार से बढ़कर नेटो की सीमा के विस्तार का है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल हो जाने के बाद नेटो को ये मौका मिलेगा कि वो रूस की सीमाओं के करीब अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करें। रूस को इसी बात पर बहुत गहरी आपत्ति है। दरअसल यूक्रेन की जंग का एक बड़ा कारण भी यही है। बेल्जियम स्थित वरिष्ठ टीकाकार और स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद फैसल खान का कहना है कि यूक्रेन संकट को देखते हुए अब स्वीडन फिनलैंड को सबक लेना चाहिए था, मगर उन्होंने सबक लेने के बजाय नेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया।
ये बहुत अहम इशू है इस वक्त दुनिया का। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जो रूस और यूक्रेन जो मसले उसके बाद जो भी तबाही आई है सारी दुनिया में और जो क्राइसिस और सारे मामला सामने आए हैं, तो बुनियादी तौर पर तो होना ये चाहिए था कि फिनलैंड और स्वीडन जो है इस तमाम सूरत हाल से सबक सीखते या देखते कि वो जो यूक्रेन ने जो एग्जिट की थी नेटो में जाने की और उसका क्या नतीजा निकला और किस तरीके से यूक्रेन के आवाम इतना नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बरक्स जो है वो फिनलैंड और स्वीडन ने जो है नेटो में अपनी दरख्वास्त जो है जमा कराई। अच्छा, अब इसमें सारा मसला जो है वो ये है कि इसके अंदर अगर हम अगर खुलकर और वजाहत से अगर और इसमें कोई हाइपोक्रेसी या डिप्लोमेसी का इस्तेमाल ना करें तो हमें ये कहना में कोई आर नहीं है कि सारे मामले के पीछे अमेरिका है। कि जो हमने ये जो चीजें नोट की वो ये है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं यूरोप को ایک خوف زدہ کر دیا ہے, ایک خوف کے اس اندر میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک امریکہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو یورپ شاید وہ سروائیو نہ کر سکے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں جبکہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں, ترکی نے اس کو بلکہ اس پہ ریزسٹنس بھی کیا اور ترکی نے بلکہ اس کو بریک کیا, لیکن اس کے باوجود جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کہا اس کو جو ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر لے کر آئیں گے. تو بنیادی طور پر یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو امریکہ کا ایک توسیع پسندانہ منصوبہ جو ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے یہ اسی کی طرف ہے. اور پھر اب یہ دیکھیں اب وہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں بڑی خوشی, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ توسیع تو ہو رہی ہے نیٹو میں اور خوشی جو ہو رہی ہے وہ امریکہ ہو رہی ہے, اور امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں کہ فن لینڈ اور سویڈن کے آنے سے نیٹو کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں 1,000,000 فوجی اور ملیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ مزید فوجیوں کی 1,000,000 تعداد دکھا کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سیدھی سی بات ہے, یہ سیدھا سیدھا جو ہے اپنا ایک استحصالی ہے ایک ان کا نظام دفاعی, یہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ روس جو ہے اس کو اب شاید برداشت نہیں کرے گا.
یہ بات بہت سے ٹیکہ کار مانتے ہیں کہ نیٹو اور سب سے بڑھ کر امریکہ نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے تھے کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی, یعنی حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ روس کے پاس شاید کوئی دوسرا وکلپ بچا ہی نہیں تھا, ورنہ روس کبھی بھی جنگ کا جوکھم نہ اٹھاتا. دراصل روس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کرو یا مرو والی استھتی پیدا ہونے جا رہی ہے, اس لیے روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے مجبور ہو کر جنگ کا فیصلہ کیا. اس بیچ وشو بھر میں بہت بڑے پیمانے پر میڈیا وار بھی جاری ہے. پشمی میڈیا اس سمے روس کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر سکری ہے. روس اور روسی راشٹرپتی کو ویلین کے روپ میں دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ٹیکہ کار محمد فیصل خان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی اور سے یوکرین جنگ کے پورے پرکرن میں بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور زمینی حالات کے بجائے ایک الگ ہی تصویر پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
یہ میں اس میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے اور ویسٹرن جو دیس ہیں ان کی جانب سے پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے یہاں باقاعدہ ڈپلائمنٹس دیکھ, امریکہ نے تقریباً پورے یورپ کے اندر اپنے ڈپلائمنٹس کر دی ہیں. یہ جو سویڈن اور فنلینڈ کے ساتھ جو 100 میل لمبا بارڈر ہے 1,300 کلومیٹر کا, وہاں پہ ساری کی ساری ڈپلائمنٹ جو ہے نیٹو کی ہو چکی ہے, حالانکہ ابھی وہ نیٹو میں نہیں آیا. یہ ایک بات جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر ایک میں مغرب بدنیتی ہے. واضح طور پر آج امریکہ نے کہا ہے, ان کے مغربی سفارتکار بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی اس جنگ کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ روس کے اسلحے کی طاقت کتنی, ایک طرف یہ بھی کہا, پھر ساتھ میں یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ روس کا جو اسلحے کا ذخیرہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور ان ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہوتا ہے جو اسلحے بنانے کے لیے جو چپس ہوتا ہے اس کی ساری دنیا میں شارٹیج ہو رہی ہے, اور چونکہ روس نے معاہدہ کیا ہوا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز وغیرہ سے اسلحے کی فراہمی کے لیے, تو اس کے اندر بہت ساری ہیپوکریسی کے اندر ہے. تو یہ کہوں گا کہ امریکہ کا اور مغرب کا ڈبل رول ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہمیں انڈیپینڈنٹ مل رہی ہے اس سے پتہ لگ رہا جتنا کہ کہا جا رہا ہے.
یہ بات بہت سے وچارک اور بدھی جیوی بھی کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ہو سکتا ہے کہ ایک شیتر ہی نہیں بلکہ وشو کے استر پر بہت بڑا بدلاؤ کر دے. اس جنگ کے نتیجے میں انتراشٹری استر پر نئے سمیکرن پیدا ہو جائیں, بلکہ شاید نیا ورلڈ آرڈر استتو میں آ جائے. دنیا کے دیش نئے حالات کا سامنا کرنے اور اپنی پوزیشن سنبھالنے اور اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور وشو ویوستھا میں بنیادی بدلاؤ آتا ہے تو سارے ہی دیشوں کی کوششیں ہوتی ہیں کہ نئے ورلڈ آرڈر میں اپنی مضبوط جگہ بنائیں, تاکہ بعد کے حالات میں کھیتریہ اور وشو استر پر ہونے والے پریورتنوں میں ان کی استھتی مضبوط ہو. دراصل راشٹریہ ہتوں کی رکشا کے لیے کھیتریہ استر پر مضبوطی بھی ضروری ہے. جو دیش کھیتریہ استر پر مضبوط ہوتے ہیں یا کسی مضبوط الائنس کا حصہ ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنے ہتوں کی سرکشا کر پاتے ہیں. شوتاو کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔
صحت کا راز۔
دوستو، کارکرم صحت کا راز کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور سید میسم کا سلام سویکار کیجیے۔
ناشپاتی ایک پھل ہے جس کا ویگیانک نام پائرس ہے اور انگریزی میں اسے پیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سوادشت ایوم رسدار اور موسمی پھل ہے۔ اپنی دنچریا میں اسے شامل کرنے سے منشیہ کے شریر میں کئی پرکار کے لابھ ہوتے ہیں۔ اس میں فائبر پایا جاتا ہے، اس میں شریر کو ٹھنڈا رکھنے کی وشیشتا پائی جاتی ہے۔ اس کے بھیتر پائے جانے والے منرل پدارتھ کئی پرکار کی بیماریوں سے لڑنے میں بدن کو سکشم بناتے ہیں۔ ناشپاتی سے شریر کی پرتیرودھک کھمتا کو بڑھاوا مل سکتا ہے۔ وشو وکھیات چکتسک ابن سینا اپنے مریضوں کو ناشپاتی کھانے کی صلاح دیا کرتے تھے۔ ناشپاتی کے بھیتر پائی جانے والی وشیشتاؤں کے کارن وہ اسے پھلوں کے راجا کے روپ میں بھی مانتے تھے۔
ناشپاتی کا پیڑ ویسے تو سامانیہ 10 سے 20 میٹر تک کی اونچائی کا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ کھیتروں میں اس کی لمبائی کم بھی ہوتی ہے۔ ناشپاتی کی کچھ پرجاتیاں جھاڑ کے روپ میں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پشچمی یوروپ اور اتری افریقہ سے سمبندت بتاتے ہیں، کنتو ورتمان سمے میں یہ وشو کے کئی دیشوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور پتے تھوڑا سا گولاکار ہوتے ہیں۔ ناشپاتی کا بیج سفید رنگ کا اور ہلکے لال رنگ کا ہوتا ہے۔ ناشپاتی گودے والا ایک رسیلا پھل ہے۔
ناشپاتی پوٹیشیم، وٹامن سی، وٹامن کے، فائبر اور بی کمپلیکس جیسے وٹامنوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ناشپاتی میں پرچور ماترا میں آئرن پایا جاتا ہے۔ اس کے اتیرکت ناشپاتی میں آرگینک کمپاؤنڈ، کھنج، فولیٹ، میگنیشیم بھی پائے جاتے ہیں۔
विश्व में नाशपाती के लगभग 1500 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इनके फलों को उनके भार, रूप और उनके कठोर या मुलायम होने के हिसाब से वर्गों में बांटा गया है। कहते हैं कि पेट के कीड़ों के लिए नाशपाती का फल बहुत लाभदायक होता है। अन्य फलों की तरह गुलाबी का जंगली पेड़ भी होता है। सामान्यतः आम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं।
जहाँ नाशपाती के फल का प्रयोग किया जाता है, वहीं اس کے پتوں، کھال تتھا اس کی ٹہنیوں کو بھی اوشدھی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناشپاتی کے بھیتر پائے جانے والے کھنج، وٹامن اور آرگینک کمپاؤنڈ سامگری ہمارے سواستھے کے لیے بہت ہی لابھدایک ہے۔ پوشن وشیشجوں کا کہنا ہے کہ یہ روچک ہے اور موتر وردھک ہوتا ہے۔ منشیہ کے 5 تنتر کو صحیح رکھنے میں ناشپاتی کی مہتوپورن بھومیکا ہوتی ہے۔
मनुष्य को रोजाना फाइबर की जितनी भी जरूरत होती है उस 18% भाग एक नाशपाती में पाया जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि आंतों में मौजूद भोजन को नाशपाती एकत्रित करके उसको सरलता से आंतों से बाहर निकालने में सहायता देती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेट की सफाई और कब्ज दूर करने में नाशपाती की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को मूत्र के मार्ग से निकालने में भी सहायक है।
नाशपाती की एक विशेषता रक्त संचार प्रणाली को ठीक रखना है। इसके भीतर पाए जाने वाले लौह के कारण ये उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है जिनके शरीर में खून की कमी होती है। नाशपाती में पाया जाने वाला ताम्र रक्त संचार प्रणाली में खून के संचार को सुचारू रखने में मदद करता है। ये खून के रेड सेल्स को बढ़ाने में भी सहायक होता है। नाशपाती का प्रयोग करके जिसमें भीतर लौह और ताम्र पाया जाता है, शरीर के अंगों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है।
नाशपाती की एक विशेषता यह है कि वो तंत्रिकाओं को शांति देती है। ये फल सीने की बीमारियों के उपचार में भी लाभकारी है। वे लोग जिनको शुगर हो गई है उनके लिए नाशपाती के भीतर पाई जाने वाली शर्करा हानिकारक नहीं होती, बल्कि ये उनके लिए लाभदायक होती है। नाशपाती के भीतर मौजूद टैनिन और पोटेशियम यूरिक एसिड को कम करते हैं। यही कारण है कि वे लोग जो गठिया और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वे भी नाशपाती का प्रयोग करके अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं।
नाशपाती की एक विशेषता ये भी है कि इसके पेड़, छाल, पत्तियों और इसके फूल का प्रयोग भी नाशपाती की ही भांति किया जाता है, जिनके अलग अलग फायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते और बुखार को समाप्त करने में सहायक होते हैं। इसके पत्ते और फूल पथरी को निकालने में मदद करते हैं। हड्डियों की सुरक्षा और ऑस्टियोपोरोसिस में भी नाशपाती का प्रयोग किया जा सकता है।
शरीर के पीएच को संतुलित रखने के लिए रोजाना हरी सब्जियों और फलों का प्रयोग करते रहना चाहिए। फलों से शरीर के पीएच लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। नाशपाती बोरोन से भरपूर होती है। बोरोन एक रासायनिक तत्व होता है। इसका निर्माण ब्रह्मांड द्वारा किरणों से होता है। ये मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बोरान हड्डियों को सुरक्षित रखने और आर्थराइटिस से बचाने में मदद करता है।
हड्डियों के निर्माण, मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी और एस्ट्रोजन आदि में भी ये प्रभावी है। गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे पैदाइश के समय नवजात में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। नाशपाती में फोलिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए यह सिफारिश की जाती है कि गर्भावस्था में महिलाएं पाबंदी से इसका प्रयोग करती रहें।
मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले विटामिन में से एक विटामिन ए है। इस विटामिन को मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक एवं लाभदायक बताया जाता है। नाशपाती में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है। ये फल विटामिन ए और ल्यूटिन तथा जैक्सेंथिन जैसे घटकों से समृद्ध होता है। नाशपाती में मौजूद तत्व आयु के बढ़ने के साथ शरीर पर होने वाली झुर्रियों और धब्बों को कम करने में सहायक होते हैं।
नाशपाती की एक विशेषता ये भी है कि गिरते हुए बल को रोकने में सक्षम होने के साथ ही बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाली बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक नाशपाती में लगभग 96 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। इस फल में पाई जाने वाली मिठास को फ्रुक्टोज कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये सीधे खून में प्रवेश नहीं करती, बल्कि कुछ समय के बाद शरीर में पहुंचती है और रुककर खून में जज्ब हो जाती है। ऐसे में शरीर के भीतर शर्करा एक साथ न पहुंचकर धीरे धीरे पहुंचती है। यही कारण है कि वो शरीर में भूख लगने का एहसास नहीं होने देती। अपनी इसी विशेषता के कारण ये शर्करा शरीर के संतुलन के लिए उचित होती है।
प्रोटेस्ट तथा यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नाशपाती के ताजा पत्तों को 50 से 100 ग्राम खौलते हुए पानी में लगभग 20 मिनट के लिए दम किया जाए। उसके बाद उसे घूंट घूंट करके दिन में 2 से 4 छोटे गिलास पीना चाहिए। इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इस पानी में नाशपाती के एक टुकड़े को डाल दिया जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि नाशपाती के इसी प्रकार के 50 ग्राम के घोल को 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद उसे थोड़े थोड़े समय पर पीने से पथरी निकलने में सहायता मिलती है।
गर्मियों में मिलने वाले फलों में से एक ये ऐसा फल है जो प्यास को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इस बारे में फ्रांसीसी भाषा में एक कहावत है जिसका अर्थ ये है कि प्यास से बचने के लिए एक नाशपाती को रखे रहो। ईरान में इसका प्रयोग बहुत व्यापक पैमाने पर होता है। कुछ लोग यहाँ पर पनीर और रोटी के साथ नाशपाती को खाने के रूप में खाते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। कच्ची नाशपाती से सिरका भी तैयार किया जाता है। ईरान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई प्रकार की जंगली नाशपातियाँ पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ की अच्छी क्वालिटी की नाशपाती नतंज, इस्फहान, यजद और किरमान में मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। हमें इजाज़त दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने जो कार्यक्रम सुना वो आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़। Oh,